कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालियै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय नमने गौरात्वेशे नमः श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टम् स्थपितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पत्रोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद मंदिर इस्कान नोएडा के इस सुधर्मा सभा के प्रांगण में भगवान श्री राधा गोविंद के पार्षद श्री रूप गोस्वामी के द्वारा उत्तम भक्ति की प्राप्ति खातिर उत्तम और ये उत्तम भक्ति उसमें दो प्रकार की भक्ति कही गई है। एक दो प्रकार की भक्ति का मतलब साधन भक्ति दो प्रकार की, हम क्या कर रहे हैं साधन भक्ति, और साधन भक्ति दो प्रकार की कही गई है। भक्ति साधन भक्ति दो प्रकार की, कौन से दो प्रकार साधन भक्ति के? वैदी साधन भक्ति और रागनों का साधन भक्ति। ये साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? भाव को क्या करना, तो भाव का प्रकट साधन भक्ति जो होता है, तो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो साधन भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि रागनों का हो या वैधियों दो साधन हो दोनों, और रागनों का हो या वैधियों दोनों साधन भक्ति है, साधन भक्ति है। एक को कहते वैधी साधन भक्ति, एक को कहते रागनोगा साधन भक्ति, और दोनों में निष्ठा तक तो दोनों साथ ही चलती है, निष्ठा तक दोनों में कोई अंतर नहीं है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही कोई राग मार्ग में जाना है तो जा सकता है, उससे पहले नहीं। इसका मतलब गहराई के कारण भाव ही प्रेम में परिवर्तित होता है। तो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, और उस लक्ष्य के लिए पहले भाव को प्रकट करना है। कल भाव के ऊपर आप सुनेंगे, उसकी डेफिनेशन है अपने आप में। ये भगवान की स्वरूप शक्ति का स्तर है असल में, स्वरूप शक्ति भगवान की। जो भाव है ये भगवान की स्वरूप शक्ति जब हृदय में प्रकट होती है तब भाव का उदय होता है, तो उसको जागृत करना है। ठीक है, तो श्रद्धा किसके ऊपर होनी चाहिए? भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण के, उनके वचनों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर और उनके भक्तों के ऊपर। यह है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा से दूसरा है साधु संघ। इसका मतलब हमको भगवान के बारे में या भगवान के शास्त्र के बारे में साधु बताएगा, तो इसका मतलब विश्वास होना चाहिए साधु के साधु के साधु भगवान के भक्त के ऊपर। और भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो क्या देते हैं? साधु का संग देते हैं। और साधु किसी के ऊपर प्रसन्न होता है तो क्या करता है? भगवान के भजन में लगाता है। ये दोनों को आप ठीक तरह से समझ लें, व्रत आता है। तो इसलिए मुख्य रूप से जब हम पढ़ते हैं उत्तम भक्ति तो दो शब्द, तीन शब्द आते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, प्राय तीन शब्द आते हैं। इनमें ये भजन के अंग है, ये मुख्य अंग है भजन के मुख्य अंग है ये। इनके प्रति इसको भजन कहते हैं। वैसे प्राय भजन के 64 अंग हैं, भक्ति के साधन भक्ति के 64 अंग है, उसमें पांच मुख्य अंग है और तीन पहले मुख्य अंग कौन से है भक्ति के? तीन मुख्य अंग साधन भक्ति के, भजन क्रिया में है दीक्षा, गुरु का आचरण लेना, ये है मुख्य अंग भक्त साधन भक्ति का। भजन क्रिया में दीक्षा है, गुरु का आश्रय लेके, दीक्षा लेके स्मरण करना। और भजन क्रिया से क्या क्या कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं? अनर्थ निवृत्ति। इस स्टेज का आपको कुछ अनुभव है? कुछ आपके जीवन में कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, सबके जीवन में चार नियम का पालन कितना जल्दी आ गया लोगों को, चाहे ही चीज है ये, तो भक्ति शुरू करते ही क्लेश चले जाते हैं सारे, वो तो चले गए, पाप चले गए, लेकिन अपराध कब तक कहां तक चलते हैं इस पूरे क्रम में? भाव तक भी थोड़ा अपराध का लेश प्रभाव रहता है। और भाव से भी कोई नीचे आया, उसका उदाहरण है भरत महाराज, जड़ भरत, ये भाव से नीचे आने का उदाहरण। तो भाव तक भी थोड़ा सा लेश रह जाता है। अनर्थ का मुख्य अर्थ है पाप से निवृत्ति। अनर्थ फिर कहते नहीं, मुख्य बात है निष्ठा होनी चाहिए श्रवण में, श्रवण कीर्तन में, श्रवणताम स्व कथा कृष्ण, ये जो है निष्ठा की बात है। तो निष्ठा किस में होनी चाहिए? भजन में। निष्ठा भजन में, बात सब है भजन की। और भजन क्या है? वस्तु कौन सी वस्तु है जिसका भजन करना है? तब कहते कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि, इसको भजन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला आदि में निष्ठा हो जाए। अब इसके बाद का हमारा स्तर आज का अभी का है रुचि। निष्ठा कहते हैं कि साधन से, निष्ठा के उपरांत साधन से परिपक्व अवस्था में भक्त के हृदय में सोने का जैसे हार पहनाया जाए, अब यहां हम आपको एक उदाहरण दे के फिर कथा को आगे चलते हैं। वैसे 5 किलो आपको कहा जाए कि पत्थर उठा के जाओ यहां से, आपको कैसे लगेगा? हाँ, माताजियों के लिए है। और कहा जाए कि 5 किलो के सोने का आपको आभूषण देते हैं तो क्या खुशी पहन के जाओगे कि नहीं? और ये अच्छा लगने लगता है तो उसको रुचि कहते हैं। तो अभी आपके लिए नापदंड क्या हुआ श्रवण कीर्तन का, रुचि का? जब श्रवण और कीर्तन में थकावट ना हो और सुनने में लालसा बढ़ती रहे तो समझ लो कि रुचि के पास पहुंचे हैं। बैठना तो है 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन उसमें हमको भार नहीं लगता है। ये पहला जो चक्रवर्ती ठाकुर का पहला ये रुचि की डेफिनेशन ऐसी है। उसमें श्री जीव गोस्वामी को कोट करके कहते हैं एक शब्द, ये आप लिख लीजिए याद करके। इसलिए कह रहा हूं कि इसके बाद का स्टेज जो है वो क्या है, रुचि के बाद क्या है? आसक्ति में यही अभिलाषा होगी, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं होगी, स्वतः होगी, अपने आप होगी। दोनों में अंतर इतना हो गया, समझ ले। इसमें बुद्धिपूर्वक है, इसका मतलब सोचेंगे अरे बेकार बातें नहीं करनी है, कथा में जाना है, ये तो हुआ बुद्धि से। और दूसरे में अपने आप जाना है, स्वतः वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अगर आपको थोड़ी देर के लिए जाके देखें कि साधन वैदी साधन और रागनों का साधन में अंतर क्या है, वैदी साधन में आसक्ति में जो विषय है, इसका मतलब भगवान जिसका भजन कर रहे हैं वो अच्छा लगने लगता है। दोनों में अंतर समझ में आया? एक में भजन अच्छा लगता है, एक में भजन का जो विषय है वो अच्छा लगता है आसक्ति में। तो आसक्ति में भगवान हम क्यों, रुचि में क्या करते हैं, भागवत मैं पूरी पढ़ लूंगा, मैं भागवत सुना लूंगा, मैं जप कर लूंगा, ये मैं कर हो गया। और उसमें क्यों कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे टेस्ट आ रही है, मुझे इसमें आनंद आ रहा है। और आसक्ति में ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसमें भगवान को सुख मिलता है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो दोनों में अंतर सिर्फ ये हो गया, एक में भजन में आ सकती है और एक में भजन आने लगती है, जिस चीज में टेस्ट आने लगती है, जिस चीज में हमको मधु माधुर्य मीठा लगने लगता है, उसकी अभिलाषा करते हैं। तो अभिलाषा का मतलब किसी पसंद की चीज को पाने की चेष्टा। तो 3 प्रकार की अभिलाषा कैसे बताई है, पहली लिखिए अनुकूलियन अभिलाषा, अनुकूल्य अभिलाषा। अनुकूल कौन सा अंग है भक्ति का, मुख्य भक्ति जो उत्तम है उसमें अनुकूल है ना, अनुकूल मतलब जो भगवान को कैसे प्रसन्न करें, अनुकूल भावों से अभिलाषा भगवान की अनुकूलता के प्राप्त करने के लिए। तो एक फिर उसको प्राप्ति की इच्छा हो, तो 3 प्रकार की एक के बाद दूसरी अभिलाषा अपने आप प्रकट होने लगती है, अलग अलग प्रयास नहीं करने की आवश्यकता। तो रुचि में श्रवण कीर्तन बगैर थके अपने आप अनायास उसको सुनने में कीर्तन करने में मन लग जाता है, अच्छा लगने लगता है। और फिर एक शब्द ये दोबारा फिर भी एक बार पक्का याद कर, क्रोध को कहते हैं कामानुज, काम आएगा पीछे क्रोध खड़ा होगा, राम होगा तो पीछे लक्ष्मण खड़ा होगा। तो दुनिया भक्त है रामानुज के पीछे चलने वाले और दुनिया वाले हैं कामानुज के चेले। काम के पीछे जाएगा तो उसका अनुज क्रोध, काम है क्रोध है, अनुज पीछे चलाएगा। तो अनु का मतलब पीछे चलने वाला, तो माधुर्य अनुभव, अनुभव का मतलब जब कथा सुनेंगे तो उस कथा के कारण मिठास आने लगेगी। तो कथा पहला हो गया, उसके पीछे मिठास आई तो अनुभव हो गया। तो माधुर्य अनुभव के लिए श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं रुचि पाप माधुर्य अनुभव, माधुर्य अनुभव। और माधुर्य अनुभव कैसे आता है, जब पाप के बीज का नाश होता है तो माधुर्य अनुभव आता है। तो इस रुचि का उदाहरण कौन सा देते हैं, आपको रुचि का कहीं उदाहरण देना हो तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 19वां श्लोक है, ठीक है, पहला स्कंद पहला अध्याय 19वां श्लोक रुचि का परिचय है। वयम तुनः वित्रप्यामा, ये 19वां अध्याय, ये 19वां अध्याय ना, इससे पहले क्या कहा है ऋषियों ने कि हमने कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए भगवान के चक्र के पीछे चलकर और नैमिषारण्य में अनुष्ठान किया था दीर्घ 17 यज्ञ का, और बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन आपकी कथा सुनते सुनते इस कथा में इतना हमको आनंद आने लगा है, इतनी इसमें हमको रुचि हो गई है, इतना ये मधुर अनुभव हो रहा है कि अब ये यज्ञ के दोहे से जो कालापन तो हुआ है लेकिन सुख नहीं मिला है। अब जो यज्ञ सुबह करके 4 बजे बंद करते थे, फिर शाम को 6 से 7 तक कथा सुनते थे, कल से अधू इसमें स्वाद आ रहा है। ये रुचि का स्तर है। इसका मतलब ये है सनकादि ऋषियों को रुचि का अनुभव हुआ कि कथा सुनते सुनते भक्त संग हो गया, कथा सुनी तो रुचि जागृत हो गई, किसमें, श्रवण में, श्रवण में उनको हो गई। अब एक दूसरा श्लोक जिसमें नारद अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, 1:5:25, अब नारद कहते हैं मुझे कैसे है भक्त, भक्त चरण रेणु, भक्त जल अभिषेक, जल और उचिष्ट प्रसाद, भक्ति र महाबल, ये 3 भक्ति के शक्तिशाली बल है। भक्त का उचिष्ट प्रसाद उसकी इच्छा से, ऐसे नहीं चुरा के, चुरा के नहीं, उसकी आज्ञा से। प्रायः भक्त चोरी करते हैं अच्छी तरह से, चाहते हुए रास्ते से इधर उधर झपटा करते, सीना झपटी करते, इच्छा से कोई दे अपने आप तो फिर तत्काल प्रभाव दिखाता है। तो क्या फिर क्या हो, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चित्त सचेतस, और इससे कथा में रुचि कैसे होती है, शुद्ध भक्तों के संग से शब्द थोड़ा सा है ऐसा ही, लेकिन थोड़ा अंतर है, महत सेवया, महत सेवया, भगवान के भक्तों का सेवा करने से भागवत श्रवण में रुचि होती है। और ये नारद का उदाहरण है, उन्होंने उन भक्ति वेदांत की सेवा की तो उनके रुचि का प्रकट्य हुआ। तो ये साधन है महत सेवया। एक और तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आपके हम सब के लिए, आप लाखों बार पढ़े तो हर बार उसमें नवीनता आती है, क्योंकि वो चेतन है, जड़ नहीं है, वो भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो जैसे हमारे भाव उसके प्रति बढ़ते जाएंगे वैसे वो अपना नया नया रूप दिखाना शुरू करेगी, हर बार पढ़ने से नया ही रस आने लगेगा। तो ये बहुत, एक बार पढ़ने से नहीं, 1000 बार पढ़ने के बाद भी पढ़ोगे तो नया रस आएगा, नित्य नवीन है। तो ये रुचि के लिए अच्छी तरह से अपना साधन करना जरूरी है, ये भजन से रुचि का उदय होता है। तो ये दो बातें, ये दो श्लोक, 7वां, 1:7, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रुचि की परिभाषा हाँ सातवें श्लोक में दी गई है। अब सातवें श्लोक का नाम क्या क्या ये श्लोक पढ़िए। ये ऐसे का ऐसे, अभी तो आजकल ये चला गया जमाना, पहले जमाने में हमको पहाड़े याद कराते थे स्कूल में, और पहाड़े ऐसे याद कराते थे रात को करवट लेते भी बोलते थे 751 ऐसा याद होता था। कभी भी कोई कहे तो अपने आप आता, नहीं तो पहले मुश्किल हो, 13 बहुत मुश्किल, 13 का पहाड़ा मुश्किल है, लेकिन वो चलते फिरते याद होता था, क्योंकि अभ्यास कर करके कहीं से भी पूछे तो एकदम आ जाता था। तो वो उदाहरण दिया है कि पहले जो चीज थोड़ा अभ्यास में लगती है वो एक बार आ जाने के बाद स्वतः अपने आप आने लगती है, उसको रुचि ऐसे कि टेस्ट पहले नहीं आती है, फिर टेस्ट आने लगती है। तब ये श्लोक उद्धृत किया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, ये रुचि का श्लोक है। कौन सा? मीठी होती है, तो भगवान का नाम मिश्री के समान है, मीठा है, लेकिन उसको अविद्या पीलिए का रोग है तो नहीं लगता है। तो क्या है? बड़ा इलाज मिश्री है इसका, इसका इलाज ही मिश्री है, किंतु फिर भी आदराद, बड़े आदर के साथ, बड़े आदर का मतलब है आदर, मतलब डर लगे कि इसका अपमान हो गया तो बड़ा नाश हो जाएगा सब कुछ, जैसे नाम अपराध है, डर है भी, आदर जिसके कारण डर लगे, हाँ इसका अर्थ यही है, जैसे दर्पण है, हाँ दर्पण का क्या अर्थ है? जिसमें अपने आप को देख के दर्प हो जाए, मेरे जैसा कोई सुना, अनुदिनम, अनुदिनम का मतलब प्रतिदिन, नेम से खालो सैव जुष्टा, अगर हम लगे रहे सेवन करने में नाम के, स्वादिक्रमाद भवती, बड़ा हमको थोड़ा आस्ते आस्ते उसमें स्वाद आने लगेगा, मिठास आने लगेगी, गदमूल हंतरी, क्योंकि वो उस बीमारी को जड़ से निकाल देगा, मूल से निकाल देगा। तो दूसरा प्रसंग जो आया है रुचि में वो ये है कि यही कीर्तन और श्रवण करते करते अपने आप अविद्या, अविद्या का यहां अर्थ है असल में मुख्य रूप से फॉल्स ईगो, ईगो अहंकार। तो इसलिए दूसरा जो इसका कि अभ्यास से ये अपने आप हो जाएगा, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए, यही इसका इलाज है। जप करने से ही अपराधों से भी मुक्त हो जाए, क्योंकि अभी हमारी समस्या अपराध है, अनर्थ निवृत्ति तो हो गई लेकिन अपराध अभी तक लगे हुए हैं। तो अपराधों से बचने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं निष्ठा के बाद सीधा राग मार्ग में चला जाता है स्वतः, फिर रुचि आ सकती है, अब उसके अंदर अपने आप छोटी हो जाती है और सीधा भाव प्रकट हो जाता है। अनर्थ निष्ठा के बाद स्वतः कभी भाव प्रकट हो सकता है, इसलिए रुचि के स्तर में भी कभी कभी भाव और प्रेम का थोड़ा सा लेस आने लगता है। इस स्तर के बाद दो प्रकार का साधन हो जाता है, वैदिक साधन और ब्रज के भक्तों के अनुगामी बनना। तो राग साधन वाले, राग अनुगा साधन वाले गोलोक वृंदावन जाने के मार्ग पे हैं, दोनों में अंतर है। ये इसका अर्थ ये नहीं है वैकुंठ वाले छोटे हो गए, वैकुंठ बहुत बड़ी बात है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में प्रायः हमारा जितना साधन है वो राग साधन है। अभी भी हम जो कर रहे हैं सुबह तुलसी पूजा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कुंज दीजिए वास विलास, क्या कहते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, बाहर से एक और अंदर से दूसरा। रुक्मणी जी जब पूजा करने गई थी कौंडनीपुर में देवी का, तो बाहर से पंडित जी कह रहा था देवी को बोलो कि हमारे ऊपर कृपा करे, और रुक्मणी जी कहती थी हे देवी हमारे ऊपर कृपा करो, कृष्ण पति के रूप में मिले, वो आस्ते आस्ते बोलती थी, वो साथ में बोलती जाती थी, लेकिन वो बूढ़िया थी, जो कोई और तो था नहीं साथ में, पंडित जी तो उसको तो दक्षिणा से काम था तो वो ध्यान नहीं दे रहा था पीछे क्या कह रही है, लेकिन वो पीछे कह रही होती थी कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले। तो ऐसे प्राय बहुत सारे भक्त हैं जो बाहर से तो ऐसे गाते हैं लेकिन अंदर में पीछे ये कहते रहते हैं तो ये वैदी साधन वाले हैं असल में। राग अनुगा है तो एक शब्द है राग आत्मिक, एक शब्द है राग अनुगा। राग आत्मिक क्या है, राग अनुगा क्या है? राग अनुगा साधन भक्ति है, राग आत्मिक सिद्ध भक्त है जो साधन नहीं कर रहे हैं, अपना परफेक्ट है, पहले से सिद्ध हो गए। तो राग आत्मिक भक्त का मतलब भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के नित्य पार्षद ब्रज के, भगवान के ब्रज को यशोदा के इस रूप का और इस चेष्टा का ध्यान करना चाहिए, उसको ऐसे लिखा है। और ऐसे किसी और का भाव है तो ऐसे किसी और भक्त का सखा भाव है तो मधुमंगल आदि, शुभल सखा आदि, वो क्या पहनते हैं, कैसे सेवा करते हैं उनका, और प्रेमी भक्त है तो कोई गोपी का, तो ये राग आत्मिक भक्त उनके पीछे चलने वाले को राग अनुगा कहते हैं। ये बात समझ में आ रही नहीं? जो भगवान के नित्य पार्षद भगवान के साथ आते हैं वो रागात्मिक भक्त हैं। रागात्मिक का मतलब उनका तो भगवान में गाढ़ प्रेम है। श्लोक आपको चाहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। तिष्ठम व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी। तिष्ठे व्रजे, ब्रज में रहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। तद अनुरागी, जो ब्रज के अनुरागी हैं, जो भगवान में अनुराग करते हैं, भगवान से बहुत रागात्मिक भक्त हैं, जन अनुगामी उनके पीछे चलना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। कालम का गोपी हो के हिरण हो के भीलनी हो, सभी कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करती। तो वृंदावन इज कॉन्शियसनेस, ये भाव है, भाव है। तो वृंदावन में कैसे रहे, शरीर से है तो अच्छा, नहीं तो मन से रहे और ब्रज के भक्तों का अनुगामी बने। तो हमारे लिए इसलिए एक और बहुत आसान आपको रास्ता बता देते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चेतन चरण, सिद्ध रूपे और साधक रूपे शब्द है, सिद्ध रूपे और साधक रूपे। जो भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में साधन में गौर लीला और सिद्ध अवस्था में कृष्ण लीला के भक्तों का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। सामान्य वातावरण में गौर भक्तों का अनुकरण करना है, उनके पीछे चलना है, इसलिए हमको रूप अनुगा बोलते हैं, वो रूप गोस्वामी के अनुगामी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती नयन मंजरी, ये सब मंजरी है, इनके अनुगामी है। कहीं सखा भाव के भक्त हैं तो हम उनके अनुगामी हैं। तो ये हम रुचि तक आते आते हमारा लक्ष्य क्या है उसका ध्यान रखना है। तो रुचि में हम कहां पहुंचे, अभी दो श्रीमद् भागवत के उदाहरण दिए, ये रुचि उत्पन्न होती है तो श्रवण कीर्तन, तो फिर हमारे स्वत जो भाव है टेस्ट डेवलप हो जाएगी ये रुचि में। दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रुचि कैसे आएगी, बोला अभ्यास करने से आएगी। अब है रुचि के दो प्रकार। हरे कृष्णा, अभी तक जो हुआ इसके विषय में कोई किसी का प्रश्न है? रुचि में अभी तक जो हमने डिस्कस किया इस विषय में कोई प्रश्न है? अब दो प्रकार की रुचि है, उसके नाम पहले याद करो, वस्तु विशेषय अपेक्षणी। वस्तु विशेषय के नहीं बजाने वाला तो ठीक है, हमारे को तो हरे कृष्ण मंत्र से मतलब है, जो ढोलक और बाजे से मतलब और बजाने वाले से मतलब नहीं है, दोनों में अंतर समझ रहे। अब मैं आपको उदाहरण ऐसे दूं, प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए, मृदंग तो आया नहीं, तो अभी कहेंगे मृदंग आएगा तब कीर्तन करेंगे, ऐसा इंतजार किया क्या? वो क्या ढोल मिला के थाली मिली के चमचा मिला के कटोरी मिली बजाए, किया कि नहीं किया? आप प्रभुपाद जी के पहले दिनों में डीटी इंस्टॉल करते हुए ठाकुर का प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखेंगे तो किचन के चमचे जो बड़े होते हैं ना कड़छी, वही लाके उससे घी से पानी से ऐसे कर रहे थे। इसमें अंतःकरण में अभी तक थोड़ा सा दोष है, उसका आभास है। तो पहले प्रकार की रुचि में अंतःकरण में दोष का आभास होता है। अंतःकरण में दोष के आभास के कारण विशेष वस्तु की आवश्यकता लगती है। तो ये रुचि का दो स्तर हैं। जो रुचि के स्तर पे आएगा, कभी कुछ भी नहीं है ताली बजा, तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आया? दो प्रकार की रुचि का अंतर समझ में आया। एक में देश काल पात्र का ध्यान रखना, वस्तु विशेष पूजा के लिए क्या चाहिए, कथा कैसे होनी चाहिए, व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। व्यवस्था कथा में बहुत बड़ी करते हैं लेकिन सुनते एक शब्द भी नहीं है, बाहर घूमते फिरते हैं। तो वस्तु के ऊपर तो बड़ी अपेक्षा है लेकिन जो जो मुख्य उद्देश्य के लिए किया था वो तो है ही नहीं, वो कथा सुनने का समय ही नहीं। जितने कथा कराने वाले हैं वो सारा व्यवस्था में खर्च करते हैं, कथा एक शब्द कुछ नहीं सुनते। तो ये जो दो प्रकार की रुचि का समझ में आ गया, उसका आचरण कैसा होता है। जिसको टेस्ट आ जाती है ना, वो पहले दूसरे लोगों को देखेगा जो दुनिया की लो बातों में लगे हुए हैं ना, उनको कहता अरे भाई क्यों अपना जीवन व्यर्थ कमा रहे हो, इतना भगवान के नाम में मिठास आती है, भगवान की कथा में वहां क्यों नहीं आते। ये उसका पहला आचरण का देखने में ऐसे आएगा, वो दूसरे लोगों को कहेगा अरे भाई व्यर्थ टाइम, क्या बेकार का टाइम गंवा रहे हो, जिंदगी तुम्हारी बेकार जा रही है, कोड़ी के बदले कानी कोड़ी लिखा है, कानी कोड़ी के बदले जा रही है। ये कोड़ी शब्द का आपको पता है, पहले कोड़ी पति के लिए सुबह शाम पेट भरना ही नहीं है, कुछ साथ जाना ही नहीं है, और ये भगवान जो मेरे साथ सदा रहता है इसको छोड़ के मैं दुनिया के कामों में कैसे लग गया। ये उनको ग्लानी अपने आप होने लगती है, रुचि का जो स्तर होता है ना, कहता मेरा समय व्यर्थ इन कामों में क्यों जा रहा है, इतना समय हो गया, गुरुजी ने कितना बड़ा कृपा किया, हमको भगवत नाम दिया, और उस वहां लिखा है कि भगवत नाम को हमने कपड़े में, जैसे ना सोने की चौ कि सोने का सिक्का आपको मिले कपड़े में बांध के रख दो और उसका महत्व ही आपके पास नहीं है और आप दूसरे दुनिया के काम में लग गए, ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। दिक्कत यह है, और भूख प्यास भी भूल जाता है, कथा वो चलती रहे तो कुछ भी चलता है। जैसे आदमी टेलीविजन के ऊपर बैठता है तीन तीन घंटे किसी, आज टेलीविजन तो अभी पुरानी हो गई, अभी तो ये उंगली से सारा दिन व्हाट्सएप के ऊपर बैठा हुआ किसी से बोलता नहीं, कोई आए जाए वो ऐसे ही करता है। एक ने हमको लिखा कि ये व्हाट्सएप ऐसे है जैसे बच्चे को पहनाया हुआ, छोटे बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना पड़ता है कि खराब तो हुआ कि नहीं हुआ, पोतड़ा आया 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 कि नहीं आया। ठाकुर से हम 8:30 से 9 बजे तक खोल के फोन को देखेंगे मैसेज आए हैं कि नहीं आए, बाकी टाइम पड़ा रहेगा फिर शाम को 15 मिनट देखेंगे। कुछ टाइम टेबल नहीं बनाया तो ये तो सारा दिन खा जाएगा तभी भी पूरा नहीं होने वाला, इसमें कभी थकता नहीं है कोई, लगा रहता। और दूसरे तरफ एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ना है, हमसे किसी ने कहा कि लोग बहुत सारा दिन परेशान करते हैं, मैंने बोला कुछ नहीं करो, जब कोई मिलने आए उसको बोला आज मेरे को भगवत गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ना है, बैठो पढ़ते, बोले यार मेरे काम है थोड़ी देर के संग में जिनके मुख से हरी कथा सदा प्रवाहित होती है जाके कथा सुनूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा और अपने जीवन अपने को सार्थक करूंगा, अब बेकार का मेरे को अपना जीवन नहीं गंवाना। ये लास्ट लाइन है, लिखी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। ऋषि वाले को ऐसे ग्लानी होती है ये मैं कैसे क्या कर रहा हूं, इतने साल हो गए, 15-20 साल हो गए हरे कृष्णा जपते जपते, अभी हमारी आसक्ति संसार की चीजों से जा नहीं रही है और भगवान की कथा में आसक्ति हो नहीं रही है, क्या हुआ है हमको, कितना बड़ा हम। और दूसरी तरफ दुनिया की चीजों में आसक्ति कम हो ही नहीं रही है, बढ़ती जा रही है, और जहां बढ़नी चाह रही है वह क्यों नहीं बढ़ रही है, ये रुचि के स्तर के ऊपर ऐसे भी तो भगवान के आनंद के लिए नृत्य कराती है। और कभी कभी नृत्य आचार्य भाव और प्रेम प्रकट होके लिखा है, नृत्य आचार्य भाव और प्रेम प्रकट होके उसके हृदय में उसको आह्लादित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। जब ऐसे वो भगवान के भक्तों का संग करता है ना, तो बड़ा आनंद का उसको अनुभव होता है, आनंद इतना आने लगता है। कभी कभी भाव का थोड़ा सा ऐसे उदय होता है हृदय में। और भाव, अब यहां कल भाव की कथा होगी, हमारे प्रिय दीनबंधु जी कथा को करेंगे, तो बहुत आनंद है। हम आपको इतना बता दें कि भाव ये आती कहां से है तो भगवान की शक्ति आती कहां से है। अब आपने, हमने रुचि में किस बात के ऊपर ज्यादा, आखिर में क्या करेगा वो, कहां जाएगा, भक्तों के संग में, उनसे कथा सुनेगा। तो भक्त जिनके हृदय में पहले ये भगवान की शक्तियां प्रकट हो चुकी हैं, वो भक्त अपने हृदय से साधक के हृदय की तरफ जब वो शक्ति प्रवेश करेगी तब उसको भाव का प्रकट्य होगा। तो भाव भगवान की कृपा से आता है, एक भक्त की कृपा से आता है। साधन से आएगा तो भक्तों के संग में भक्त के हृदय से आएगा, तभी भाव का अनुभव होगा। और भाव का स्तर बड़ा ऊंचा स्तर है, वो स्तर का राग अनुराग भाव महाभाव महामोदक मादक, ये बहुत बड़े प्रेम के ऊपर के स्तर हैं। तो प्रेम तो सामान्य हो गया, इसके बाद के ऊपर के स्तर बहुत हैं। तो उन स्तरों के ऊपर भी भक्तों का आगे बढ़ना है। तो अब यहां हमारा रुचि का विषय पूर्णाहुति के ऊपर पहुंचता है। अब कुछ प्रश्न उत्तर का समय रखते हैं, जो भी ये सारा श्रद्धा से लेके प्रेम तक का सफर है, जो जो जर्नी है, यात्रा है, इसमें हम रुचि का आज पड़ाव पूरा करते हैं। शाम को अभी आपका आपकी ब्रजभाषी के दो परिभाषाएं हैं, एक जो ब्रज में बासी हो गए हैं, बासी का मतलब धंधा करने के लिए आए जैसे साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, वो बासी है, वासी नहीं है, एक वासी है एक बासी है। तो बासी से कोई लाभ नहीं होना है, ब्रजवासी को साधन की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है पहले से, वो सिद्ध ही है, वो पहले से सिद्ध भगवान के साथ ही आए, उनका साधन नहीं करते हैं, वो सिद्ध है। जैसे गोपियां कोई साधन नहीं करती, कभी भी तो रुचि कहां से आएगी। नहीं, ये विचार आते हैं तो अच्छी बात है, उस स्तर पे भी विचार आते रहते हैं, लेकिन यहाँ विचार आने के बाद भक्तों के संग में जाके रहता है, उसमें रहता नहीं है, बस इतना अंतर है। अनर्थ जब तक होंगे तब तक संग में रहने का सौभाग्य हो नहीं पाएगा, अनर्थ पूरे हो गए तो सौभाग्य प्राप्त होगा, आके भक्तों के संग में रहेगा, बस इतना अंतर हो जाएगा। लिखित क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाने पड़ेंगे आपको, हम एक तो पढ़ लेंगे, अंग्रेजी वाला पढ़ लेंगे, हिंदी वाले पढ़ने पड़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, विथ रेफरेंस टू भगवद गीता 1525 नारद डिस्क्रिप्शन। इसलिए आजकल भी दुकानदारी कर रहे हैं, किसी का चश्मा किसी का मोबाइल लेते हैं और फिर फ्रूटी ऊपर भेजो, पार्ले भेजो तो वापस देते, अभी भी धंधा चल रहा है। और एक रमन रेती के बंदर है, किसी का फोन नहीं उठाएंगे, किसी का चश्मा नहीं, और आपके खाना के जेब में कुछ भी होगा तो ऐसे हाथ डालें जैसे पत्नी डाला है, निकाल के खा जाएंगे। तो ये सारे जो चुराने प्रसाद चुराने वाले भक्त हैं, तो ये दो प्रकार का उधर आपको मिलेगा। आप ध्यान से मांग के आज्ञा से खाओगे तो होगा रुचि प्रकट, नहीं तो मौन की प्रकट। तो इसलिए ये जरूरी है, ऐसा कुछ दिन कंटिन्यूअस 5-7 दिन का, अभी भी इसमें भी संशोधन ये किया जाए। अब हम गए थे द्वारका, अभी आ रहे हैं हम द्वारका से, बेट द्वारका में एक जगह हमने देखी, बहुत दूर, मुख्य मंदिर से 6 किलोमीटर दूर, बस कुछ नहीं है, जंगल है चारों ओर, अंदर में रह सकते हो, प्रसाद दो टाइम खिला देगा, वहीं जाके ये कथा करो सुबह शाम। कई बार जा नहीं सकते हो, कोई साधन है नहीं जाने का, उतना ही मिलेगा जितना खाना है, और वो भी साधु वाला मिलेगा, तब ये बातें और ज्यादा अंदर बैठेंगी, स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यहां तो अभी आप बाहर निकलते ही सोच, एक भक्त ऐसे रो रहा है, कीर्तन में नाच रहा है, वो भागता हुआ गया। श्री प्रभुपाद एक भक्त है कौन नेता है के सामने कीर्तन में रो रहा है, नाच रहा है, प्रभुपाद बोला उसको लात मारो, अगर फिर भी रोता रहे तो वो भाव में है और उठ के भागे तो समझना नाटक कर रहा है। और वो धनंजय तो सचपच ऐसे ही आके उसको लात मारी और वो एकदम उठ के भाग गया। असल में क्या है, इसको श्री रूप गोस्वामी ने लिखा ऐसे है कि कुछ लोग वाकई भगवान के सामने भाव में आके रोते हैं, लेकिन भगवान के कारण नहीं, वो आए हैं कि नहीं आए वो कसौटी के ऊपर देखना पड़ेगा। वो कसौटियां 9 हैं और उसके ऊपर देखना है कि ये कसौटी के ऊपर पूरा होता है कि नहीं, बाकी सिर्फ रोने धोने से भाव का पता नहीं लगता। ऐसा भाव आए तो सब माताओं भाव में ही रहती है। तो बच्चे सारा दिन रोते रहते हैं, तो वो तो भाव वाले हो गए।
आपने कहा कि वस्तु विशेष अपेक्षित रुचि में वस्तु की अभिलाषा होती है,
सामान्य हमें मालूम है। एक भक्त हमारे साथ होता था, बोला प्रभु जी ऐसे कीर्तन नहीं करेंगे, कम से कम कोई वादक हो, कोई बजाने वाला हो, उसको कहा उसके बगैर नहीं करेंगे। नहीं है तो है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। हमारा उद्देश्य भगवान की कथा में कीर्तन में होना चाहिए, सेकेंडरी चीजें जरूरी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा।
हरे कृष्ण, रुचि भाव का स्तर इतना आनंददायक होता है, भक्त सदैव भगवान की लीला कथा में रोमांचित रहता है, फिर वह किसी दूसरे वस्तु में कैसे जुड़ जाता है, जैसे भरत महाराज
सत्व में स्थित हो गया, वहां तक पहुंच गए, और फिर वो उसके बाद की स्तर रुचि की है और आसक्ति की है, और उसके बाद भाव की है और प्रेम की है। विश्वनाथ चक्रधर ने इन श्लोकों में ये सब स्तर दिए। सात्विक वृत्ति है दया, किसी के ऊपर दया करना सात्विक वृत्ति है, करनी चाहिए, लेकिन दया करने के बाद उसको उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। महाराज भरत ने उस हिरण के नवजात शावक के ऊपर दया की, ये तो अच्छा था, लेकिन फिर उसमें आसक्ति हो गई, वो रजोगुण हो गया, और आसक्ति के कारण उसके भजन में विक्षेप होने लगा। आसक्ति के कारण अपने भजन में विक्षेप ना आने दे, करते हरे कृष्णा और मन जाता है इधर उधर, तो ये विक्षेप हो गया, ये नहीं आने दे। रुचि के स्तर पे एकदम कथा से या भगवान की बात से और कतर मन चला गया तो थोड़ी देर पता नहीं लगता है, आसक्ति में जाता ही नहीं, आसक्ति में भगवान में मन जाता है पता नहीं लगता है, और रुचि में दुनिया में मन जाता है पता नहीं लगता है, दोनों में अंतर ये। आसक्ति में भले बैठा हो आपके साथ बात कर रहा हो, लेकिन उसका मन भाग के चला जाएगा वृंदावन में, उसका मन चला जाएगा भक्ति में, और रुचि में भले भक्ति में बैठा हो लेकिन मन किसी वक्त थोड़ी देर बाहर जाएगा, फिर पता लगा मैं बाहर क्यों गया, इसको वापस लाना पड़ेगा। तो इन कामों में आपको रुचि होने लगे, प्रचार करने में रुचि हो, थकावट नहीं होती है, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, थकावट नहीं है तो कीर्तन में थकावट नहीं है। तो ये रुचि की परिभाषा है, कीर्तन करते हैं 2-2, 3-3 घंटे थकते नहीं है, तो ये रुचि है तब करते हैं ना, नहीं तो टेस्ट नहीं। अब हम देखें वृंदावन से रोज दर्शन कराने के लिए ले जाए, वही स्थान वही कथा रोज 50-10 साल से 20 साल से रुचि नहीं होगी तो कौन करेगा, वही काम रोज करना है तो रुचि है तब कर रहा है ना भाई, रोज भगवान की पूजा, रोज भगवान का भोग बना, रुचि है तब कर रहा है ना, रुचि नहीं होगी तो आदमी थक जाएगा ना, तो रुचि के कारण ये सब कुछ हो सकता है, काम दोनों के ऊपर कर रहा है। उदाहरण इसका देते हैं, आग जलाओगे तो आग अपना काम दिखाएगी, लेकिन उसके अंदर सूखी लकड़ी डालोगे तो एकदम जल जाएगी, और गीली लकड़ी डालोगे तो धुआं निकलेगा। इसका मतलब नहीं है कि आग में ताकत नहीं है, लकड़ी में गीलापन इतना है कि उसको कम से कम 10-20 घंटे आग में रखोगे तब जाके थोड़ा सूखेगी, उसके बाद जलेगी। तो अंतर यह है कि नाम जपते जपते कुछ लोग जल्दी भगवान की तरफ आते हैं, कुछ देर से आते हैं, जो जल्दी आते हैं उनके हृदय के ऊपर थोड़ा सा जमा हुआ मैल है, इसलिए धुल।
जब इस्कॉन ज्वाइन किए थे तो शिला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में बहुत रुचि थी, काफी घंटे किताब पढ़ने में बहुत आनंद आता था, लेकिन अब कुछ मिनट भी पढ़ने से नींद आने लगती है, इच्छा बहुत है पर रुचि नहीं, कृपया मदद करें।
बहुत अच्छा है, अब वो पुस्तक वितरण करो, बहुत पढ़ लिया। अब ये मैराथन में वितरण करके देख लो, आपकी रुचि वापस जाग जाएगी। वो सो गई है, अब पढ़ लिया है तो अब उसको वितरण करो। नहीं बजरंगी, अब वितरण करो तो काम चले। नहीं, वितरण करने से प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, फिर आपकी रुचि जाग जाएगी। हरे कृष्ण। फोर्स है प्राय इस कान के अंदर 99% ऑटोमेटिकली साधन हमारा राग की तरफ मुड़ता है, क्योंकि हमारा जो भी साधन है वो पहले सेट ही राग मार्ग पे है, उसमें सॉफ्टवेयर ही राग मार्ग का डला हुआ है। वो अपने आप अपने वो समय आने के ऊपर वहां से उसमें वो लाइट जलने लग जाती है राग वाली, लेकिन उसके लिए ऐसे समय समय के ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु का ऐसे सेमिनार कभी रखना चाहिए, तो कुछ विशेष प्रेम और प्रेम वैकुंठ वो रास्ता सामान्य। इस्कान में 99.9% ही हमारा सॉफ्टवेयर ही राग का डला हुआ है, राग अनुगा का डला हुआ है, इसलिए उसके लिए अलग प्रयास नहीं, उसके लिए सिर्फ अलग अभ्यास की जरूरत है, प्रयास की नहीं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद की किताबों में सब कुछ ये लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि राग अनुगा कैसे करते हैं, रागात्मिक क्या है, कोई कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो कोई बता देगा आपको कि आपका स्वरूप मोर का है और आप गिरदन ऐसे करते रहो घर में, वो उससे कुछ नहीं होगा, अपने आप प्रकट होगा। स्वरूप हमारा सेवा का है। और एक अभिलाषा का नाम है अनुकूल अभिलाषा, दूसरी का सौहृदय अभिलाषा और तीसरी का प्राप्ति अभिलाषा। अनुकूल अभिलाषा भगवान की अनुकूलता से, रुचि से, अनुकूलता से सेवा करना, भगवान को प्राप्त करने की कामना रखना, ये उसमें भी आती है भाव, ये इसके स्तर पे भी तीन आती है। भगवान को, फिर भगवान को अपना मानना, पहले मैं भगवान का हूं फिर भगवान मेरा है, प्राप्त करने का। तो ये तीन नाम, तीन शब्द लिखे हैं टेक्निकली, उसका विस्तार नहीं किया है क्योंकि इसका विस्तार फिर भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है। जीव गोस्वामी की, भक्ति रसामृत सिंधु की जय।